श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 79 भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब प्रतिपदा के दिन शुक्ल पक्ष का पहला दिन एक प्रचंड तथा भयावना झंझावात आया, जिससे चारों ओर धूल बिखर गई और सर्वत्र पीब की दुर्गंध फैल गई। इसके बाद यज्ञशाला के क्षेत्र में बलवल द्वारा भेजी गई घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात वह असुर हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात प्रकट हुआ। विशाल काय असुर काले कज्जल के पिंड जैसा लग रहा था। उसकी चोटी तथा धाड़ी पिघले तांबे जैसे थी और उसके चेहरे में भयावने दांत थे तथा भौहें गड्ढे में घुसी थी। उसे देखकर बलराम ने शत्रु सेनाओं को खंड खंड कर देने वाली अपनी गदा और असुरों को दंड देने वाले अपने हल का स्मरण किया। इस प्रकार बुलाए जाने पर उनके दोनों हथियार तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। जो ही बलवल असुर आकाश से उड़ा, भगवान बलराम ने अपने हल की नोक से उसे पकड़ लिया और इस ब्राह्मण उत्पीड़क के सिर पर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी गदा से प्रहार किया। बलवल पीड़ा से चिल्ला उठा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और उसमें से खून का फव्वारा निकलने लगा। वह विद्युत पात से प्रताड़ित लाल गेरू पर्वत जैसा लग रहा था। पूज्य ऋषियों ने हार्दिक स्तुतियों से बलराम का सम्मान किया और उन्हें अमोघ वर दिए। तब उन्होंने उनका अनुष्ठानिक स्नान कराया, जिस तरह देवताओं ने इंद्र को औपचारिक स्नान कराया था जब उसने वृत्त का वध किया था। उन्होंने बलराम जी को कभी न मुरझाने वाली कमल के फूलों से बनी वैजयंती नामक माला दी, जिसमें लक्ष्मी जी रहती हैं। उन्होंने बलराम को दिव्य वस्त्रों की जोड़ी तथा आभूषण भी दिए। तत्पश्चात ऋषियों से विदा होकर भगवान ब्राह्मणों की टोली के साथ कौशिकी नदी गए, जहां उन्होंने स्नान किया। वहां से वे उस सरोवर पर गए जिससे सरयू नदी निकलती है। भगवान सरयू नदी की धारा का अनुसरण करते हुए प्रयाग आए, जहां उन्होंने स्नान किया और देवताओं तथा अन्य जीवों को तर्पण करने का अनुष्ठान संपन्न किया। इसके बाद वे पुलहा ऋषि के आश्रम गए। भगवान बलराम ने गोमती, गंडकी तथा विपाशा नदियों में स्नान किया और शोण में भी डुबकी लगाई। वे गया गए, जहां अपने पितरों की पूजा की। गंगा मुख जाकर उन्होंने शुद्धि के लिए स्नान किया। महेंद्र पर्वत पर उन्होंने परशुराम के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने गोदावरी नदी की सातों शाखाओं में स्नान किया। उन्होंने वीणा, पंपा तथा भीमरती नदियों में भी स्नान किया। फिर बलराम भगवान स्कंद से मिले और भगवान गिरीश के धाम श्री शैल गए। दक्षिणी प्रांतों में जिन्हें द्रविड़ देश कहा जाता है, भगवान ने पवित्र वेंकट पर्वत, काम पोषणी तथा कांची नामक शहर, पवित्र कावेरी नदी तथा अत्यंत पवित्र श्री रंग को देखा, जहां साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। वहां से वे ऋषभ पर्वत गए, जहां पर कृष्ण भी रहते हैं, और फिर दक्षिण मथुरा गए। तत्पश्चात वे सेतु बंध गए, जहां बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सेतु बंध रामेश्वरम में भगवान हलायुध ने ब्राह्मणों को दान में 10,000 गौवें दी। फिर वे कृतमाला तथा ताम्रपर्णी नदियों एवं विशाल मलय पर्वत गए। मलय श्रेणी में भगवान बलराम को ध्यान मग्न अगस्त्य ऋषि मिले। ऋषि को नमस्कार करके भगवान ने स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त्य से विदा होकर वे दक्षिणी सागर के तट पर गए, जहां उन्होंने कन्याकुमारी के रूप में दुर्गा देवी को देखा। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ गए और उन्होंने पवित्र पंचापसरा सरोवर में स्नान किया, जहां साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। यहां पर उन्होंने 10,000 गोवे दान में दी। तब भगवान ने केरल तथा त्रिगर्त राज्यों से होकर यात्रा करते हुए भगवान शिव की पवित्र नगरी गोकर्ण देखी, जहां साक्षात भगवान दुर्जटी शिव प्रकट होते हैं। इसके बाद एक द्वीप में निवास करने वाली देवी पार्वती का दर्शन करके बलराम जी पवित्र चुरपारक जिले से होकर गुजरे और तापी पयोषणी तथा निर्विंद्या नदियों में स्नान किया। तत्पश्चात वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और रेवा नदी गए, जिसके किनारे माहिष्मती नगरी स्थित है। फिर उन्होंने मनु तीर्थ में स्नान किया और अंत में प्रभास लौट आए। भगवान ने कुछ ब्राह्मणों से सुना कि किस तरह कुरुओं तथा पांडवों के बीच युद्ध में भाग लेने वाले सारे राजा मारे जा चुके थे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो गई है। उस समय युद्ध क्षेत्र में भीम तथा दुर्योधन के मध्य चल रहे गदा युद्ध को रोकने की इच्छा से बलराम जी कुरुक्षेत्र गए। जब युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने बलराम को देखा, तो उन सबों ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु यह सोचते हुए कि ये हमें क्या बतलाने आए हैं, वे सब मौन रहे। बलराम ने देखा कि दुर्योधन तथा भीम अपने अपने हाथों में गदा लिए कलात्मक ढंग से चक्कर लगाते क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। बलराम जी ने कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, सुनो तो, तुम दोनों योद्धा युद्ध बल में समान हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक में शारीरिक बल अधिक है, जबकि दूसरा कला में अधिक प्रशिक्षित है। क्योंकि तुम दोनों युद्ध बल में बिल्कुल एक जैसे हो, अतः मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस द्वंद में तुम में से कोई कैसे जीतेगा या हारेगा। अतएव कृपा करके इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क पूर्ण होने पर भी बलराम जी के अनुरोध को ان دونوں نے سویکار نہیں کیا، کیونکہ ان کی پارسپرک شترتا کٹر تھی۔ وے دونوں ہی ایک دوسرے پر کیے گئے اپمانوں تتھا آگھاتوں کو نرنتر سمرن کرتے آ رہے تھے۔ اس نشکرش پر پہنچتے ہوئے کہ یدھ ودھاتا دوارا آیوجت ہوتا ہے، بلرام جی دوارکا لوٹ گئے۔ وہاں اگرسین نے تتھا ان کے انیہ سمبندیوں نے ان کا سواگت کیا، جو سبھی انہیں دیکھ کر پرفلت تھے۔ بعد میں بلرام جی نیمش رائن لوٹ آئے، جہاں رشیوں نے سمست یگیوں کے ساکشات روپ انہیں پرسنتا پوروک ویوید پرکار کے ویدک یگیوں کو سمپن کرنے میں لگا دیا۔ اب بلرام جی سمست یدھوں سے نیورتی پراپت کر چکے تھے۔ سرو شکتیمان بھگوان بلرام نے رشیوں کو شدھ آدھیاتمک گیان پردان کیا، جس سے وے سبھی بلرام جی کے بھیتر سارے برہمانڈ کو دیکھ سکے، اور یہ بھی دیکھ سکے کہ وے ہر وستو میں سمائے ہوئے ہیں۔ اپنی پتنی کے ساتھ اوبرت سنان کرنے کے بعد سندر وستروں سے سجت اور النکاروں سے وبھوشت تتھا اپنے نکٹ سمبندیوں انیہ پریوار والوں ایوم متروں سے گرے بلرام جی ایسے بھویا لگ رہے تھے مانو تیج یکت اپنی کرنوں سے گرا ہوا چندرما ہو۔ ان انت تتھا اپرمیہ بلشالی بھگوان بلرام دوارا اسنکھ انیہ لیلائیں سمپن کی گئی، جو اپنی یوگ مایا سے منشیہ کے روپ میں دکھتے ہیں۔ انت بھگوان بلرام کے سارے کاریہ کلاپ چکت کر دینے والے ہیں، جو کوئی بھی پراتہ تتھا سایہ ان کا نرنتر سمرن کرتا ہے وہ بھگوان شری وشنو کا اتینت پریہ بن جاتا ہے۔ اس پرکار شریمد بھاگوت کے دسویں سکند کے انترگت بھگوان بلرام کی تیرتھ یاترا نامک 79ویں ادھیائے کے شریلا بھکتی ویدانت سوامی پربھوپاد کے نیت سیوکوں دوارا رچت تاتپریہ پورن ہوئے۔